Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
विषयों में गीता के हिसाब से तीन प्रकार के धर्म रहते हैं, तमोगुण से युक्त विषय, रजोगुण से युक्त विषय, सत्वगुण से युक्त विषय। रूप भी तामसिक रूप हो सकते हैं, राजसिक रूप हो सकते हैं और सात्विक रूप होते हैं। शब्द भी तामसिक शब्द होते हैं, राजसिक शब्द होते हैं और सात्विक शब्द होते हैं। रस भी तामसिक रस होता है, राजसिक रस होता है, सात्विक रस होता है। स्पर्श भी तामसिक स्पर्श, राजसिक स्पर्श, सात्विक स्पर्श। गंध भी राजसिक गंध, तामसिक गंध, राजसिक गंध और सात्विक गंध। भोजन तामसिक, राजसिक और सात्विक। इसी प्रकार के साधकों को ये सब आहार शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए का अर्थ होता है पांचों विषय में जो शुद्ध अशुद्ध का भेद है उसको विवेक के द्वारा निश्चय कर लिया जाए और जो शुद्ध विषय हैं वही साधक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करे, अशुद्ध जो राजसिक और तामसिक हैं उन विषयों का परित्याग कर दे। वैष्णव ग्रंथों में आहार शुद्धि का बहुत महत्व दिया जाता है। आहार शुद्धि का अर्थ केवल भोजन शुद्धि अर्थ नहीं है। शंकराचार्य जी ने आहार शुद्धि का अर्थ यावत विषय की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए ऐसा अर्थ किया गीता भाष्य में। तो अन्न ये कौन सा हो गया? दसवीं कला अन्न की कला है। ग्यारहवीं कला वीर्य है। अन्न के बाद शरीर में होने वाली जो शक्ति है उसी को वीर्य कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं भी व्यवहार में ये प्रयोग करता है। यदि लगातार दो दिन चार दिन वो व्रत करे, उपवास करे और अन्न खाना बंद कर देवे तो वो खुद भी ये कहता है कि मैं कमजोर हो गया, मैं काम करने में समर्थ नहीं हूं क्योंकि व्रत है, कमजोर हूं मैं। और जब वो धीरे धीरे अन्न ग्रहण करने लगता है तो उसकी सारी एनर्जी शरीर में संचार होती है, ताकत आ जाता है, वीर्य। बोले मैं अब परफेक्ट हूं, ठीक हूं, अब मैं अपने काम करने में समर्थ हूं। ये उसकी कला है वीर्य। ये कौन सी कला हो गई? ग्यारहवीं कला हो गई। बारहवीं कला है तप। तप शब्द का अर्थ होता है तितिक्षा, सहन करने की क्षमता, क्योंकि इसके बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता है भाई। यदि संसार में कोई प्राणी जी रहा है जब तक, तब तक वो जीने का एक ही आधार है, उसके पास सहन करने की क्षमता है। आपके घुटने में दर्द है, सहन नहीं करोगे तो करोगे क्या? आपके कमर में दर्द है, सहन नहीं करोगे तो करोगे क्या? ये सहन करना तो आपका ये आपकी कला है, आपके जीवन में जुड़ा हुआ है सहन करना। ले हर चीज सहन कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही सहन कर रहे हैं, पानी कटौती हो गई सहन कर रहे हैं, है सब चीज सहन करते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है सहन कर रहे हैं कि नहीं बोलो? सभी सहन कर रहे हैं, प्रतिकार क्या कर रहे हैं? कोई प्रतिकार है? पानी कटौती का प्रतिकार क्या होगा? गर्मी बढ़ रही है उसका प्रतिकार क्या होगा? महंगाई बढ़ता जा रहा है उसका प्रतिकार क्या होगा? सड़क आंदोलन, ये उसके प्रतिकार नहीं है। ये तो सारा विश्व मंदी में चपेट में आ गया है, तो तुम बंबई को बंद करके सड़क आंदोलन करके उस मंदी को हटा तो सकोगे नहीं, आर्थिक मंदी को, उस महंगाई को रोक नहीं पाओगे, कैसे रोकोगे? तो फिर क्या करें महाराज? तुम्हारा धर्म है उसका प्रयोग करो, उसी से तुमको एक जीने का आधार हो सकता है और कुछ नहीं। एक साल हापुस नहीं खाया तो क्या हर जाए है? यही सोचकर नहीं सहन करना पड़ेगा। तो ये तप है। ये कौन सा हो गया? 12। 13वीं कला है मंत्र। मनुष्य आजकल ये कहने लग जाते हैं कि मंत्र की क्या आवश्यकता है, गुरु की क्या आवश्यकता है, शास्त्र की क्या आवश्यकता है। अरे बाबा, शास्त्र, वेद और मंत्रों की आवश्यकता जीवन में है, क्योंकि ये तुम्हारी कला है, तुम्हारी पहचान है। ये इसके बिना तुम्हारा काम आगे नहीं चलेगा। तुम किसी न किसी के कहा तो मानना ही पड़ेगा, कोई न कोई एक आधार तो मानना ही पड़ेगा बाबा। या मंत्र शब्द का अर्थ होता है अपनी पारंपरिक शास्त्र, अपौरुषीय शास्त्र, प्रमाणभूत ग्रंथ। उसको यह मंत्र शब्द से लिया है। सबके अपने एक प्रमाणभूत ग्रंथ हैं। अरे भाई, माओवादियों के भी माओ से तुंग का जो प्रमाण है उसको प्रमाण मानेंगे ना। वेद को भले ही प्रमाण न माने, माओ से तुंग ने जो कहा उसको प्रमाण मानेंगे कि नहीं? है, सैकड़ों वर्ष पहले उसने जो कहा उसके कथन को ही वो लोग विश्वास करके वे लोग अपने क्रांति में आगे उतरते हैं। ये तो छोड़ दो नास्तिकों की बात, उनकी भी मंत्र हैं, नास्तिकों के भी मंत्र हैं। वो भी एक सिस्टमेटिकल योजना बनाकर जाते हैं। उस योजना का आधार भी पूर्व पूर्व का ही तो है, चार्वाक का। हो, उनके सबके गुरु चार्वाक है। और चार्वाक का सभी चार्वाक के सिद्धांत, अब उसका गुरु था मूल रूप में। चार्वाक को, चार्वाक दर्शन को बनाने वाला मूल आचार्य है विरोचन। विरोचन से चार्वाक दर्शन आरंभ हुआ है और उसी से ये माओ, ताओ, खाओ जितने भी हैं निकले हैं, ये उन्हीं के चेले परंपरा के हैं। उनके भी एक अपनी सिद्धांत है, उसी को यहां मंत्र कहा। श्री के हेतु जो ऋग, यजुर्वेद, साम आदि जो मंत्र हैं उन्हीं, वो जीवन की कला है, जीवन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वही तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। क्या श्रेय है, क्या प्रेय है, क्या हित है, क्या अहित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। और मंत्र है इसीलिए तुम्हारे पास कर्म संपादन हो पाएगा। तो मंत्र कौन सी कला थी? 13वीं। तो 14वीं कला है कर्म। कर्म उसके आधार पर करोगे, मंत्र के आधार पर कर्म करोगे। किस देवता के लिए कौन से मंत्र, किस विधि के विनियोग करने पर कौन सा देवता प्रसन्न होंगे और उस देवता प्रसन्नता के बाद फल क्या प्राप्त होगा, इसके मंत्र है। आपके पास आंख है, आंख के देखने की रोशनी कम हो रही है, तो चक्षुषो उपनिषद के मंत्रों का नित्य अनुष्ठान करो। और उस चाक्षुषो उपनिषद के मंत्र के अनुष्ठान से सूर्य देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हारी नेत्र की ज्योति बढ़ सकती है। इस मंत्र और कर्म, शास्त्र माने मंत्र, उसके द्वारा प्रेरित जो कर्म है वो मनुष्य की 14वीं कला है। कर्म के बाद प्राप्त होने वाले लोक, ये मनुष्य की 15वीं कला है। लोक कहीं ना कहीं आपको रहना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका आश्रय होना है। और वो लोक किसके आधार पर आपको प्राप्त होगा? तो कर्म के आधार पर लोक की प्राप्ति होगी, चाहे मृतलोक की, चाहे पाताल लोक की, चाहे स्वर्ग लोक की, चाहे देवलोक, चाहे पितृलोक, चाहे बंबई हो, चाहे दिल्ली हो, कर्मों के आधार ही प्राप्त हुआ है। इसलिए लोक ये 15वीं कला है जीवात्मा की। और जीवात्मा की अंतिम 16वीं कला है नाम। देवदत्त, यज्ञदत्त, राम प्रसाद, श्याम प्रसाद, ये जीवात्मा की कला है। इसी के द्वारा जीवात्मा पहचाना जाएगा, इन्हीं नाम के द्वारा जीवात्मा जाना जाएगा। लोक के द्वारा ही जीवात्मा जाना जाएगा कि अमेरिका का है कि भारत का है कि नेपाल का है। बांग्लादेश का है, हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, खान खून लगाया मुसलमान, शर्मा सुरमा लगा दिया हिंदू, फास्टर फुस्टर लगा दिया क्रिश्चियन, ना उसी से पहचाना जाएगा उनको, उसके अलावा उसको पहचानने का उपाय क्या है बोलो ना। देश कहां का है वो उसकी पहचान है, फलाने का जगह का, फलाना का है, फलाना का है। ये 16 कला पुरुष सुकेशा भारद्वाज ने पूछा था पिपला ऋषि से कि वो कहां रहता है, क्योंकि कुछ दिन से विवेक चूड़ामणि में भी वो कला की बात आ रही है, स्पिरिचुअल सेंटर में प्रवचन करते समय में तो बार बार कुछ जिज्ञासु बोलते हैं कि जीवात्मा की कला क्या है महाराज, तो आज मौका लग गया इसलिए जीवात्माओं की कला का वर्णन कर दिया। इस 16 कला प्रश्न उपनिषद के 6 प्रश्न में है, सुकेशा भारद्वाज के प्रश्न से पिपला ऋषि ने 16 कलाओं का वर्णन किया है। जीवात्मा का पहचान इन्हीं 16 कला से होती है और इन्हीं के रहने पर आत्मा है ये माना जाता है, और इनके न रहने पर आत्मा नहीं है ये कहा जाता है। तो आत्मा के है और नहीं है इसके पहचान के लिए 16 कला परमात्मा ने खुद अपने निर्माण करके उन 16 कलाओं से युक्त होकर शरीर में वो बैठा हुआ है, लेकिन खुद अकलोपी दृष्टा है। ये दृष्ट शब्द को दोनों साथ जोड़ देना, सकलोपी दृष्टा अकलोपी दृष्टा, शरीर आदि में वही परमात्मा वो सकल के रूप में दिखाई पड़ता है। तो विचार और विवेक द्वारा खंडाकार वृत्ति के द्वारा देखने पर वही परमात्मा अकलो अपि दृष्ट इन कलाओं से असंग भी है, अलग भी है। वो सामान्य दृष्टि से मठाकाश मठ के अंदर घुसा हुआ दिखता है, तो विचार दृष्टि से ये मठाकाश मठाकाश से अलग भी है, यानी वो स्वरूपता वो महाकाश है, मठाकाश नहीं है। सकलोपि दृष्टा अकलोपि दृष्टा आदि ससंयोग निमित्त हेतु परात्रिकाल कृत्रिकालात् अकलोपि दृष्टा तम विश्वरूपम, वही परमात्मा विश्वरूप हुआ हुआ है, और इसी विश्व को ही तुम आधार मानकर परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना करनी है। रूपम रूपम प्रतिरूप बहुआ, परमात्मा ने जितने भी रूप धारण किया है उन सब को मिलाकर नाम हुआ विश्वरूप। विश्वमेव रूपम यस्य स विश्वरूप, सारा विश्व उसी का ही रूप है, उससे भिन्न नहीं है। विवर्तित पदार्थ अधिष्ठान रूप है, अधिष्ठान के रूप से भिन्न रूप नहीं है, भ्रांति से भिन्न मान रहे हो। तत्म विश्वरूपम परमात्मानम भवभूतम ईड्यम भवती इति भवा भवंती इति भूतः, जो होते हैं उसको भूत कहते हैं, जो कुछ होते हैं जिससे वही भवभूत है। शंकराचार्य जी ने इसकी भवभूत की व्याख्या की है, भवति अस्मादिति भवः, जिससे जो होते हैं उसका नाम भव, भव शब्द होने वाले वस्तु को भी भव, भवति इति भव, भवति इति भव, जो होता है यानी पैदा होता है उसका नाम भी भव, इसलिए संसार का नाम भव। और ये भव होने के कारण रोग हो गया तो क्या हो गया, भव रोग। मुमुक्षुओं के लिए ये संसार भव रोग है, तो मुमुक्षुओं के लिए ये संसार अमृत है, वो तो रोग ही नहीं मानते, वो तो अमृत मानते। संसार और सांसारिक पदार्थ को प्राप्ति हो जाए वो तो क्या अपने को भाग्यशाली मानते, लेकिन मुमुक्षु कहता है कि ये तो रोग है। और इसीलिए तो महाराजा भर्तृहरि ने कह दिया कि अरे भाई भोगे रोग वयम, जिसको तुम दिव्य भोग मान रहे हो, भोक्ता सावधान, ये भोग रोग का कारण है। भोगे रोग वयम कुले च्युति वयम वित्ते निरपालाद वयम मौने दैन्य वयम बले रिपु वयम शास्त्रे विवादाद वयम। तुम ज्यादा शास्त्र पढ़ोगे तो ज्यादा झगड़ा करोगे ही करोगे। ज्यादा शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति झगड़ा न करे संभव ही नहीं है, क्योंकि बात बात पर वो कहता है तूने क्या पढ़ा है, देखो ये शास्त्र में लिखा है, एक गीत ले, तो बार बार डिस्कशन करता है। शास्त्रीय विवादात भयम मौने दैन्य भयम रूपे जराया भयम, सुंदर हो तो बुढ़ौती का डर है, है? कुरूप होने का डर है। तो संसार क्या है तो बोले सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि निर्णाम। एक मनुष्य के लिए ये संसार जिधर देखो वहीं डर और भय का ही कारण बना हुआ है। फिर महाराज मनुष्य निर्भय कैसे होगा, तो वैराग्यमेव अभयम, जिसने संसार और सांसारिक पदार्थों से वैराग्यता को धारण कर ली है वो व्यक्ति न रूप के चलते जरा का भय होगा उसको, न बल के चलते शत्रु का भय होगा, न शास्त्र के चलते विवाद का भय होगा, न भोग के चलते रोग का भय होगा। काये कृतांतात भयम, शरीर के चलते मृत्यु का भय होता है। वैराग्य वाला व्यक्ति को तो काये कृतांतात क्या भय है, मरता है शरीर, मरता है मेरा क्या लेना देना है। काये कृतांता भय निर्भयम, वैराग्य में वा भयम, इसलिए संसार में भय रहित होना चाहते हो तो वैराग्य का बुलेट प्रूफ पहन लो। ये जो वैराग्य है ये नेताओं के द्वारा पहना गया बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ, लेकिन इसके बावजूद भी वो मरते हैं, डरते रहते हैं। लेकिन ये वैराग्य का बुलेट प्रूफ पहन लोगे तो फिर तुमको कहीं भी किसी भी चीज का डर नहीं होगा, न मृत्यु का डर, न रोग का डर, न शोक का डर, न जरा का डर। इसलिए भवती इति भव संसार, भवती यस्मात् इति भव परमात्मा, जिससे ये भव होता है उस वो भव भवभूति विभूति इड्यम। इड्य शब्द का अर्थ होता है आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय। देवम स्वचित्तस्थम इत्यादि विशेषणों से युक्त वो परमात्मा कहां है, स्वचित्तस्थम अपने ही अंतकरण में वो विद्यमान है, वो कहीं बाहर खोजने नहीं जाना। फिर जिनको कहा ये अकल है, विश्वरूप है, भवभूति है, ये जिसकी विशेषण ये सब बताई गई थी तटस्थ लक्षण, उस तटस्थ लक्षण से युक्त पुरुष को खोजने कहां जाओगे। स्वचित्तस्थम देवम द्योतना देव प्रकाशमान देव पूर्वम उपास्य, वह जिज्ञास्य पूर्व उपास्य है। ऐसे जो तटस्थ लक्षण परमात्मा है स्वरूप लक्षण की जिज्ञासा से पूर्व तटस्थ लक्षण की उपासना करनी है, क्योंकि तुम्हारी जिज्ञासा का विषय तटस्थ लक्षण नहीं है। क्योंकि हम उस तटस्थ लक्षण को जानना नहीं चाह रहे, हम तो उसको जानना चाह रहे हैं जिसको जानने के बाद फिर जानना अवशेष न रहे, और जिसको जान लेने के बाद वो स्वरूप हो जावे, तो ये तो फिर तटस्थ लक्षण को जानने पर जानना अवशेष नहीं रहेगा, ये बात तो बनती नहीं है। और तटस्थ लक्षण को जानकर तटस्थ लक्षण रूप हो जाना हमारा प्रयोजन है ही भी नहीं, विश्वरूप को जानकर विश्वरूप हो जाना हमारा प्रयोजन नहीं है, समझ गए ना। तो फिर हमारा प्रयोजन है स्वरूप लक्षण की अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति। और उस स्वरूप लक्षण की अपरोक्ष अनुभूति की जब तक नहीं होती है तब तक पूर्वम उससे पूर्व उपास्य तटस्थ लक्षण की अपने हृदय में आप इस रूप में उपासना करो। उस उपासना का प्रतिफलन ये होगा कि उसकी कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, चित्त शुद्धि, इन सब के द्वारा उसी परमात्मा के स्वरूप लक्षण की अनुभूति। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं परमात्मा साधन भी है और साध्य भी है। तटस्थ लक्षण साध्य उपासना का साधन होने के कारण वह साधन रूप है और स्वरूप लक्षण तुम्हारा प्राप्तव्य होने के कारण साध्य है। और आगे क्या कहते हैं, सवृक्ष कालाकृति भी पर्वण्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्ततेयम् धर्मावहम् पापनुदम् भगेशम् ज्ञात्वात्मस्तम् अमृतम् विश्वधाम। सवृक्ष कालाकृति भी परो अन्य स तटस्थ लक्षण परमात्मा वृक्ष काल के आकृति से परे है, वृक्षाकृति कालाकृति पर, वृक्ष से परे है भाई वो परमात्मा, किसी भी वृक्ष में वो मिलने वाला नहीं है। पेड़ में तो पक्षी रहते हैं, परमात्मा थोड़ी रहता है। लेकिन उपनिषद में कहा है ना, दौ सुपर्ण सयुज सखाया समान वृक्ष परिस्वस्थ जाते हैं। तो यहां कौन सी वृक्ष की बात कर रहे हैं, तो बोले संसार वृक्ष, ऊर्धमूल मदक शाखा अश्वत्थम प्राहुरभ्य एकायनो यसो द्विफल त्रिमूल चतुरस पंच विध षडात्मा सप्त त्वगस्त विटप दसच्छ नवक्षद दसच्छदि द्विखग यादि वृक्ष। भागवत के एकादश स्कंद में नव योगेश्वरों ने ये संसार वृक्ष को इस तरह वर्णन किया है और गीता में भी संसार को अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णन किया है और कठोपनिषद में इसी को ही केवल एक पद के प्रयोग करके बदलकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में रखकर अपने नाम का ट्रेडमार्क का बना दिया। ये श्लोक तो यमराज की रचना है, ऊर्धमूल अवाक शाखा ईश्वर अश्वत्थ सनातन, कठोपनिषद का श्रुति यही है। लेकिन उसको भगवान श्री कृष्ण ने ऊर्धमूल अधः शाखा, वहां अवाक शाखा है, यहां अधः शाखा है। अधः कहना और अवाक कहना ये दोनों ही लोअर के लिए है, नीचे के लिए है। अवाक कहो चाहे अधः कहो, ये संसार वृक्ष, वो परमात्मा इस वृक्ष से परे है। संसाराकृति और कालाकृति, सवृक्ष वृक्ष कालाकृति भी परवन्य, वो काल से भी परे है। काल की जो अवयव है उसी को काल की आकृति कहा गया है। यो तो काल की आकृति दिखाई पड़ने वाली नहीं है, मन से दिखाई पड़ती है, नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ती है। काल की आकृति नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ेगा, मन से दिखाई पड़ेगा। काल की आकृति क्या है, तो क्षण पल लव आदि जो है ना, वो निमेश आदि, घड़ी, पक्ष संवत्सर, कल्प विकल्प, यही तो काल की शाखा प्रशाखाएं। एक वृक्ष की तरह काल खड़ा है भाई, उससे परे है वो, क्योंकि दोनों के वो आधार है, अधिष्ठान है। यस्मात् प्रपंच परिवर्तयेते अयम्, जिस अधिष्ठान से ये सारा का सारा काल और संसार वृक्ष परिवर्तते विवर्तित होता है, यानी प्रगट हो गया, स्फुरित हो गया। धर्मावहम पापनुदम भगेशम, ऐसे तटस्थ लक्षण परमात्मा को यदि तुम अपनी हृदयस्थ उपासना करोगे तो उसका फल क्या होगा, धर्मावहम, धर्म की अभिवृद्धि होगी और पापनुदम, पाप का क्षय होगा। भगेशम, भगेशम का अर्थ हो गया सड़ैश्वर्य से संपन्न हुआ हुआ, षण्णाम भग इति ऋणा, जो छह प्रकार के भाग हैं उससे युक्त हुआ हुआ वो मालिक भगे सब। ज्ञात्वा आत्मस्थम, उसको कहां जानना है? पहले कहा कि आत्मा में उपासना करो, अब ये मंत्र तुरंत ये कह रहे हैं कि उस आत्मा में ही यानी हृदय में ही उसको जानो। पहले हृदय मानो, उपासना मान्यता पर टिका हुआ है और ज्ञान मान्यता पर टिकता नहीं है। ज्ञान मानने की चीज नहीं है, ज्ञान तो जानने की चीज, अनुभव पर टिका हुआ है। उपासना अनुभव पर टिकता नहीं है, उपासना श्रद्धा और विश्वास से मानने की चीज है। इसलिए यहां ज्ञात्वात्मस्तम अमृतम विश्वधाम, वो अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। और आगे क्या कहेंगे कल देख लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।